सी बूंदे अमृत की दिल में गूंजे धुन वो प्यारी मुरली की।
ओम शांति। में लिखी हुई ये कविता है। निसिम इखियाइल की, द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री। कवि अंग्रेजी में लिखता है। The night of the scorpion. I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice, parting with his poison, flash of diabolic tail in the dark room. He risked the rain again. The peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one with candles and with lanterns, throwing giant scorpion shadows on the mud-baked walls. They searched for him. He was not found. They clicked their tongues with every movement that the scorpion made. His poison moved in my mother's blood. They said, may he sit still. They said, may the sins of your previous births be burnt away tonight. They said, may your sufferings decrease the misfortune of your next birth. They said, may the sum of all evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain. May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition. They said, and they sat around on the floor with my mother in the center, the peace of understanding on each face, more candles, more lanterns, more neighbors, more insects and endless rain. My mother twisted through and through, groaning on a mat, my father, skeptic rationalist, trying every curse and blessing powder, mixture, herb and hybrid. He even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. I watched the flame feeding on my mother. I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. After 20 hours, it lost its tongue. My mother only said, thank God. The scorpion picked on me and spared my children. Kavi ne varnan kiya hai. जब बारिश हो रही थी और उसकी माँ को एक बिच्छू ने काटा तो क्या क्या हुआ, कौन कौन सी बातें हुई। कल एक प्रश्न पूछा था, चिंतन मनन मंथन मनन अर्थात उसको जीवन में कैसे लाना, इस विषय में सोचना, दृढ़ संकल्प करना, उसको प्रैक्टिकल में लाना। मंथन अर्थात गहराई में जाना और सार तत्व को ले आना। चिंतन अर्थात सागर को देखना और सोचना सागर के विषय में। मनन अर्थात सागर में डुबकी लगाना। मंथन अर्थात उसके तल में जाकर मोती ले आना। ये कविता क्या कह रही है? कविता कहती है, मुझे वह रात याद है जब मेरी माँ को बिच्छू ने डंक मारा था। 10 घंटों की लगातार बारिश ने उसे अर्थात उसने अपना विष छोड़ते हुए अंधेरे कमरे में अपनी शैतानी पूंछ की एक चमक दिखाई और फिर वह बारिश का सामना करते हुए बाहर भाग गया। कौन? बिच्छू। गांव के लोग मक्खियों के दुष्ट बिच्छू की शक्ति निष्क्रिय हो जाए, मोमबत्तियां और लालटेन लेकर जो मिट्टी की दीवारों पर बिच्छू की विशाल छाया डाल रही थी वे उसे ढूंढने लगे, लेकिन वह नहीं मिला। कौन? बिच्छू। वे अपनी जीभ से तुत्कार करते हुए बोले, बिच्छू का हर हिलना डुलना माँ के रक्त में उसके जहर को और फैला देता है। अर्थात बिच्छू ने हिलना डुलना नहीं चाहिए, जितना बिच्छू हिल रहा है वो जहर और फैल रहा है। वे कहने लगे, वह वही स्थिर बैठा रहे, तेरे पिछले जन्मों के सारे पाप आज की रात जल जाए। उन्होंने कहा, उन्होंने मेरी माँ से क्या कहा, ये तुम्हारे पिछले जन्मों के पाप है। उन्होंने कहा, तेरा यह दुख तेरे अगले जन्म की दुर्भाग्य की घड़ी को कम करेगा। इसको कहा? माँ को कहा। उन्होंने प्रार्थना की, इस माया जगत में अच्छाई और बुराई का जो संतुलन है वह तेरे दुख के कारण बुराई की ओर से थोड़ा कम हो जाए। उन्होंने कहा, यह जहर तेरे शरीर को इच्छा से, वासना से, तेरी आत्मा को अभिलाषा से शुद्ध कर दे। और वे सब माँ के चारों ओर जमीन पर बैठ गए। हर चेहरे पर समझदारी थी और स्वीकार का एक शांत भाव था। और भी मोमबत्तियां, और भी लालटेन, और भी पड़ोसी, और भी किट, और बाहर लगातार बरसती हुई बारिश। मेरी माँ चटाई पर दर्द से तड़पती रही, कराहती रही। मेरे पिता जो संशयी और तर्कवादी थे, माई फादर स्केप्टिक एंड रैशनलिस्ट, ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड, हर उपाय आजमा रहे थे, मंत्र से लेकर औषधि तक, जड़ी बूटी से लेकर रासायनिक मिश्रण तक। उन्होंने माँ के डसे हुए पैर के अंगूठे पर थोड़ा मिट्टी का तेल डालकर उसमें आग लगा दी। मैंने देखा वह लौ मेरी माँ के शरीर पर जल रही थी। I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. मैंने एक साधु अपने पिताजी के लिए कह रहा है, उनको देखा कि किसी मंत्र से जहर को वश में करने के लिए अपने अनुष्ठान कर रहा था। 20 घंटे बाद इट लॉस्ट इट्स टंग। 20 घंटे के बाद उस डंक की पीड़ा समाप्त हो गई। माई मदर ओनली सेड, मेरी माँ ने केवल इतना कहा, भगवान का शुक्र है कि बिच्छू ने मुझे डंक मारा, मेरे बच्चों को नहीं। फिर इस कविता पर फिर आएंगे। तीस ग्यारह 2011 अव्यक्त मुरली, 30 नवंबर 2011। ब्राह्मण जीवन के तीन महान भाग्य कौन कौन से हैं? दिव्य जन का भाग्य, तीन संबंधों का भाग्य और सर्व प्राप्तियों का भाग्य। जन्म कैसा है? दिव्य। संबंध, सर्व प्राप्ति। तीन संबंध एक ही परमात्मा से कैसे प्राप्त होते हैं? वही बाप है, वही शिक्षक है और वही सद्गुरु, तीनों एक ही परमात्मा है। तो वो पिता है, टीचर है और कौन है? गुरु है, प्रिसेप्टर। बाप के संबंध से कौन सी प्राप्ति होती है? श्रेष्ठ वर्षा और सर्व खजानों की प्राप्ति होती है। खजाने कितने हैं? कितने खजाने हैं? नव निधियों की चर्चा है, अष्ट सिद्धि, नवनिधियों, नवनिधि के दाता असबरदीन, जानकी माता, हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां है। ज्ञान की नवनिधियां कौन कौन सी है? ज्ञान की नवनिधियां, नव खजाने। कुशल भाई, ज्ञान, दूसरा गुण शक्तियाँ, चौथा पवित्रता, पांचवा दुआएं, छठवा खुशी, सातवा समय, आठवा संकल्प और नौवा संतुष्टता। सर्वश्रेष्ठ खजाना कौन सा है इनमें से? सबसे बड़ा खजाना कौन सा है नौ में से? संतुष्टता, ज्ञान, श्रेष्ठ संकल्प और खुशी, समय और
गुण
और सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? और कोई उत्तर? अविनाशी कौन सा है? ज्ञान, ज्ञान अविनाशी। सभी अविनाशी है। अगर एक चुनना हो तो किसको चुनोगे? एक को चुनना है बस। आप कौन सा पकड़ोगे? इस पर फिर से आएंगे वापस। शिक्षक के संबंध से कौन सा पद प्राप्त होता है? स्वराज्य और भविष्य का राज्य पद। सदगुरु की सबसे बड़ी श्रीमत क्या है? अपने को क्या समझ? आत्मा। और किसको याद करेंगे? बाप को याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? इस रूप में याद करेंगे। महत्वपूर्ण है उसको याद करना। एक, परमधाम में ज्योति बिंदु रूप में याद करना। दूसरा, सूक्ष्म वतन में याद करना। तीसरा, ये जो चलते नहीं इसको अलग कर देना। तीसरा, ब्रह्मा तन में याद करेंगे। चौथा, कर्म क्षेत्र नहीं, उसका कौन सा रूप? एक तो परम धाम के सारे रूप, एक याद परम धाम की, एक याद सूक्ष्म वतन की, एक ज्योति बिंदु, एक ब्रह्मा तन में कंबाइंड स्वरूप, वो अलग। तो मुख्य या तो दादी के तन में बाप दादा। महत्वपूर्ण, देह के सर्व संबंधों को भूल, अपने आप को आत्मा समझ, बाप को याद करो। देह के संबंध कौन से हैं? देह के संबंध कौन से? माता पिता भाई बहन, ये फेल। देह के संबंध क्या है? देह अर्थात शरीर, संबंध अर्थात रिलेशन। देह के जो संबंध में आ रहा है वो क्या आ रहा है? जो भी देह के संबंध में आ रहा है वो है देह के संबंध। तो देह के संबंध में है रूप रस स्पर्श शब्द गंध। रूप रस स्पर्श शब्द गंध, यह है विषय वस्तु और यह है विषय। और विषय वस्तु है आँख, नाक, कान, स्पर्श, त्वचा। तो त्वचा के संबंध में जो आ रहा है वो है देह का संबंध अर्थात स्पर्श। इस स्पर्श को भूल, जो सुनाई दे रहा है वो इंद्रिय और विषय, विषय इंद्रियों पर टकराते हैं। तो ये जो टक्कर है इस टक्कर को भूल, यह है देह के संबंध। कौन से संबंध है देह के? अच्छी आवाज सुनी, अच्छी लगी, अच्छी आवाज नहीं है उसको सुना, अच्छी नहीं लगी, उसके प्रति द्वेष, इसके प्रति राग, कुछ खाया बहुत अच्छा लगा, स्वाद, देह का संबंध, ये संबंध यहाँ एस्टैब्लिश हुआ। तीसरा, त्वचा, सुगंध, सुगंध, नाक, इसका कांटेक्ट हुआ, ये है देह का संबंध। तो अपने को आत्मा, देह सहित देह के सर्व संबंध भूल, देह देह तो छोड़ दो, देह के संबंध कौन कौन से है? हवा का स्पर्श देह का संबंध, कानों में वाणी का स्पर्श देह का संबंध, खुशबू देह का संबंध, स्वाद देह का संबंध, कोई दृश्य दिखा, सुंदर कुछ दिखा उससे आकर्षित हुए, असुंदर कुछ दिखा उसके प्रति घृणा। तो इंद्रिय, जब इंद्रिय विषय जब इंद्रियों से टकराते हैं तो यहाँ पर संवेदना उत्पन्न होती है। संवेदना दो प्रकार की, एक सुखद एक दुखद। अगर वो सुखद है उसके प्रति राग उत्पन्न होता है, यदि वो दुखद है उसके प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। यदि बहुत स्तुति के शब्द सुने तो राग उत्पन्न होता है, अगर निंदा के शब्द सुने तो द्वेष उत्पन्न होता है। कान, इसे कहते हैं देह के संबंध। इसको भूल, अपने आप को आत्मा समझ। किसको भूल? टोटल 10 इंद्रियां हैं। ये थी ज्ञानेन्द्रिया। कर्मेंद्रिया कौन सी है? 5। ये रूप रस स्पर्श शब्द गंध, इन्हें कहते हैं ज्ञानेन्द्रिया, और कर्मेंद्रिया है 5। हाथ, पैर, मुख, बोलने वाला, स्वाद नहीं, मुख, ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, ये 5 है कर्मेंद्रिया। ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन जननेंद्रिया, ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन हाथ, पैर, मुख, बोलना, हाथ ने कुछ स्पर्श किया और अच्छा लगा, पैर स्पर्श, जननेंद्रिया स्पर्श, इन सब को भूल। ये सब क्या है? देह के संबंध। इनको भूल, क्या समझो? अपने आप को आत्मा समझ, और फिर बाप को याद। कितने सारे स्टेजेस है? 4 है। एक तो देह, देह सहित देह को ही भूल, दूसरा देह के सर्व संबंध, तीसरा आत्मा समझ, याद कर बाप। ये संपूर्ण जीवन भर की साधना है। इन एक वाक्य के लिए सारी अव्यक्त मुरलियां है, अव्यक्त संदेश है, सारे साकार साकार मुरली। देह के संबंध को वो नहीं समझना, लौकिक माँ लौकिक बाप, उनको भूलना बड़ा आसान है। सद्गुरु की सबसे बड़ी श्रीमत कौन सी है? अपने को आत्मा समझ, एक बाप को याद करना। संगम का एक एक मिनट इतना मूल्यवान क्यों है? क्योंकि एक जन्म में 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। तीव्र पुरुषार्थ के लिए किन दो बातों पर विशेष ध्यान देना है? समय, संकल्प। सर्वशक्तियां समय पर कार्य क्यों नहीं करती? क्योंकि स्वमान की सीट पर सेट नहीं रहती आत्मा। स्वमान की सीट पर सेट रहना का क्या अर्थ है? स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा समझकर स्थित रहना। देहाभिमान और स्वमान में क्या अंतर है? स्वमान शक्ति देता है, देहाभिमान शक्ति को कमजोर करता है। अमृत वेला किस स्वरूप का विशेष अनुभव की सकाश से क्या लाभ होता है? संपूर्ण विश्व के वायुमंडल में शांति और शक्ति फैलती है। एक नया मेडिटेशन है, उसको कहते हैं इमरजेंसी मेडिटेशन। कौन सा मेडिटेशन करना है? इमरजेंसी मेडिटेशन। ये क्या होता है? इमरजेंसी मेडिटेशन, अर्जेंट, हाँ कोई भी परिस्थिति है तो तैयार रहना चाहिए। एकदम अचानक कोई परिस्थिति आ गई, किसी की डेथ का पता चला तो प्रश्न क्या आता है, कैसे गया, कब गया, क्यों गया, कहाँ गया, क्या क्या हुआ, ये सारी घटनाक्रम व्यक्ति जानना चाहते हैं। ये समय है किसका, इमरजेंसी मेडिटेशन का। कुछ भी हो जाए हलचल, क्या करना है, इमरजेंसी मेडिटेशन। कहीं पर भी भूकंप, त्रासदी, प्राकृतिक आपदाएं, कुछ भी, क्या करना है, इमरजेंसी मेडिटेशन। इमरजेंसी किट रेडी रखनी है, क्रैश कार्ड, सारे इंजेक्शंस जिसमें हो, सारा कुछ उसमें हो, इमरजेंसी मेडिटेशन, 30 सेकेंड इमरजेंसी मेडिटेशन। कितना सेकेंड, 30 सेकेंड। तुरंत क्या करना है, किरणें फैलानी है। कौन से किरणें फैलाएंगे, शांति की किरणें, सुख की किरणें, सभी अभी अभी फैला लेंगे। 30 सेकेंड। एक प्रश्न है सभी से, ऑप्शन है 7। सात ऑप्शन। पहला ऑप्शन ज्ञान, दूसरा ऑप्शन पवित्रता, तीसरा ऑप्शन सुख, चौथा ऑप्शन शांति, अगला ऑप्शन शक्ति, आनंद। 7 ऑप्शन से एक ऑप्शन चूज करना है, ओनली वन ऑप्शन अलाउड। ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, शक्ति, आनंद, 7 है ना। और जिनको पता है वो बताएंगे नहीं। पवित्रता, एक ही ऑप्शन बताना है। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, तो ये बाकी भी तो निकल रहे हैं। आत्मा का स्वधर्म एक ही है, शांति। आत्मा का स्वधर्म क्या है, शांति। आत्मा का स्वधर्म शांति है, इसलिए ओम वो सब भी हो सकता है, परंतु आत्मा का स्वधर्म क्या है, शांति। और देखा जाए तो सबसे बड़ा खजाना है गुण, क्यों, इस पर चिंतन करना है। 9 खजानों में से सबसे बड़ा खजाना गुण, इस पर कल चर्चा होगी। मन को सदा बिजी रखने के लिए 3 श्रेष्ठ उपाय कौन से हैं? मन को सदा बिजी रखने के लिए 3 श्रेष्ठ उपाय, मनन शक्ति, बराबर। तो अपनी डायरी खोलेंगे, उसमें एक जार बनाएंगे, बिजी माइंड जार। एक जार होता है ना ऐसा कांच का, उसको नाम देंगे बिजी माइंड जार। और रोज इसमें नए नए चिटकियां डालनी है। अगर घर जाने के बाद वास्तव में ऐसा एक जार बना के रखना, उसमें कुछ कुछ चिटकियां होगी। जैसे एक चिटकी है रीड द मुरली, मुरली पढ़ो, ये चिटकियां डाल के रख देना है उसमें, युक्तियां। माइंड बिजी जार, बिजी माइंड जार, सॉरी बिजी माइंड जार, उसमें चिटकियां कौन कौन सी डालेंगे, डाल के रख देना है। ये इमरजेंसी में काम आएगा। कब इमरजेंसी में काम आएगा, जब बेचैनी हो रही है, कुछ समझ ही नहीं रहा है क्या करना है, तब इसमें से एक चिटकी उठा लेना। हाँ अच्छा, अचार। इसमें चिटकियां डाल के रखनी है, और वो क्या चिटकियां हो, अलग अलग, जैसे मुरली पढ़ो एक चिटकी है। तो जब इमरजेंसी में कुछ बुद्धि काम नहीं करती है, फेल हो जाती है बुद्धि, तब एक चिटकी रैंडमली निकालनी है और फिर उसमें जो आया वो कर लेना। और क्या हो सकती है चिटकी कि मनसा सेवा करो, और क्या हो सकती है चिट्ठी जाकर किसी की मदद करो। रोज टारगेट रखना है कम से कम 10 लोगों का कल्याण करना है, मदद करनी है। कितने लोगों की? कम से कम 10। वो मदद स्थूल हो सकती है, किसी को आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, गाड़ी खाली है फिर भी बिठाते नहीं गाड़ी में, क्यों? क्योंकि कोई उल्टी करेगा और गाड़ी खराब हो जाएगी, कोई बैठेगा नहीं हमारी गाड़ी में, क्योंकि पता नहीं इन लोगों का, उल्टी ना कर दे और गाड़ी हमारी खराब हो जाए। हाँ मैं बड़ा ये भी एक मदद ही हो गई। कोई बीमार है, आधी रात को अपना ज्ञान योग छोड़कर उसे हॉस्पिटल पहुंचाना, उसकी मदद करना, टिफिन पहुंचाना, भोजन पहुंचाना, पानी देना, ये सब क्या है? टूल है परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। किसी वृद्धाश्रम में जाकर वहाँ के जो बूढ़े लोग हैं उनके बेटे कभी मिलने नहीं आते उनसे, उनकी बहू कभी मिलने नहीं आती उनसे, उनकी जाकर मदद कर देना। वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, ब्लड डोनेशन कर लेना चुपचाप जाकर, पता नहीं हमारा खून किसके काम आ जाए। लोगों को रेयर ब्लड ग्रुप्स होते हैं पर देते नहीं है, कहते हमारा खून कम हो जाएगा। कई लोग हैं जो नहीं देते, आज तक नहीं दिए। बहुत वैल्यूबल है, हम कैसे देते। तो ब्लड डोनेशन ये भी एक स्थूल है पर सेवा है। तो 10 प्रकार की मदद, अलग अलग प्रकार की मदद, उसके बारे में नहीं सोचना है। हम किस भाव से दे रहे हो वो महत्वपूर्ण है। फुल स्टॉप। एक चिटकी क्या डालना है? फुल स्टॉप। एक चिटकी क्या डालना है? ड्रामा। एक चिटकी क्या डालना है? ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। एक चिटकी डालनी है साक्षी भाव, क्षमा। ये इसमें डाल के रख देना है, बहुत सारी चिटकियाँ इमरजेंसी में काम आएगी। ये सामने रख देना है जब मन अस्थिर हो, मन बेचैन हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, उस समय एक चिटकी उठा लेना, उसमें जो भी है वो पढ़ के उसको तुरंत करना। कुछ भी हो सकता, एनीथिंग। तो बिजी माइंड जार। तो प्रश्न क्या था? मन को सदा बिजी रखने के लिए 3 श्रेष्ठ उपाय, मनसा सेवा, मनन चिंतन और सेवा। क्या करना है? मनसा सेवा, मनन चिंतन और स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा, स्थूल सेवा, यज्ञ सेवा, कोई भी सेवा। पुरुषार्थ में अलबेलापन क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि अलबेलापन पुरुषार्थ को कमजोर कर देता है। समय को समीप लाने की जिम्मेदारी किसकी है? संपूर्ण बनने वाले ब्राह्मण बच्चों की। आज समय की सबसे बड़ी पुकार क्या है? मुरली से। तीव्र पुरुषार्थी भव। दुखी आत्माओं पर रहम करने के 3 साधन कौन से हैं? मनसा, वाचा, संबंध संपर्क। विभिन्न विंग्स की सेवा का अगला लक्ष्य क्या होना चाहिए? केवल सहयोगी नहीं बल्कि वारिस आत्माएं तैयार, जीवन डैश करते हैं, समर्पित कर बाप के बनते हैं, यह है माइक और वारिस। तो विभिन्न वर्गों की सेवा का अगला लक्ष्य क्या होना चाहिए? केवल सहयोगी नहीं बल्कि वारिस आत्माएं तैयार करना। शब्द क्या है? लक्ष्य। अगर किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है, आईएएस की एग्जाम देनी है, तो क्या वो वास्तुशास्त्र की किताबें पढ़ेगा? अगर किसी को मेडिकल में एडमिशन लिए तो इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ेगा? किसी को साइंटिस्ट बनना है, साइंटिस्ट, तो वो न्यूमरोलॉजी की किताबें पढ़ेगा? जिसका जो लक्ष्य है उसको वो पढ़ता है, उसको वो देखता है, पढ़ता है और करता है। पढ़ना, देखना और करना, हम यहां किस लिए आए थे? ब्राह्मण किस लिए बने? जीवन को अर्पित क्यों किया? महान लक्ष्य के लिए, स्वयं को परिवर्तन करने के लिए, विश्व को परिवर्तन करने के लिए, देवता बनने के लिए, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? कहीं लक्ष्य से भटक तो नहीं गए? एक माता है, अपने पति को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया और सब कुछ छोड़कर वो मधुबन आ जाती है, और डिपार्टमेंट में ही किसी और भाई से प्यार अगर हो जाता है तो इसको क्या कहेंगे? सारा संसार छोड़ के आ गए। किस लिए छोड़ के आ गए? भगवान का बनने के लिए। और यहीं पर किसी में फंस गए और यहीं में किसी में अटक गए, उसको क्या कहेंगे? लक्ष्य से कहीं हम भटक तो नहीं गए? या फिर भटकना तो बहुत छोटा शब्द है, कहीं विपरीत तो नहीं जा रहे? ये लक्ष्य है उसका उल्टा जा रहे कहीं? ये तो नहीं है कहीं? यही तो सत्य नहीं है? कौन सी गाड़ी में बैठे? माउंट आबू के टोल नाका पर है और नीचे की ओर जा रहे हैं, आबू रोड की ओर, और ये सोच रहे हैं कि मैं माउंट आबू की ओर जा रहा हूं, और उनको थोड़ा सा लगता है शायद मैं पहुंच ही जाऊंगा माउंट आबू। कहीं दिशा विपरीत तो नहीं हो गई? किताबें नहीं पढ़ता है क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा, उसकी एग्जाम है चार दिनों के बाद। करंट अफेयर पढ़ेगा आईएएस वाला एक थी, या फिर कोई बीमारियों के बारे में पढ़ते बैठेगा मेडिकल की? कुशल भाई करंट अफेयर्स ना, तो जो लक्ष्य है उसी के बारे में पढ़ना, जो लक्ष्य है उसी को देखना, और जो लक्ष्य है उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में पढ़ना, उसी के इर्द गिर्द घूमते रहना, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि संसार में तो हजारों चीजें हैं, कोई एक नहीं, पढ़ने के लिए कितनी सारी चीजें, कमी है। तो इसको फिर से रिवाइज करना है। क्या रिवाइज करेंगे? मेरा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है? पैसे इकट्ठा करना लक्ष्य है? चेयर लक्ष्य है? बैच लक्ष्य है? पोजीशन लक्ष्य है? पद लक्ष्य है? प्रसिद्धि लक्ष्य है? सब्सक्राइबर्स लक्ष्य है? लाइक्स लक्ष्य है? कितनों को इन्फ्लुएंस किया, ये लक्ष्य है? स्पीकर बनना, ये लक्ष्य है? क्या लक्ष्य? इंचार्ज बनना लक्ष्य है? हेड बनना लक्ष्य है? बॉस बनना लक्ष्य है? हुकूमत? लक्ष्य क्या है? रिवाइज द एम। फिर से एक बार रुककर रिवाइज करना है कि मैं किस ओर जा रहा हूं, मुझे क्या बनना है? डॉक्टर बनना है? इंजीनियर बनना है? लॉयर बनना है? क्या बनना है? यूट्यूबर बनना है? इन्फ्लुएंसर बनना है? पॉडकास्टर बनना है? क्या बनना है? या योगी बनना है? तपस्वी बनना है? तो क्या कहा? विभिन्न विंग्स की सेवा का अगला लक्ष्य क्या होना चाहिए? केवल सहयोगी नहीं बल्कि वारिस आत्मा है। वारिस की परिभाषा, माइक अर्थात संदेश फैलाने वाले, वारिस अर्थात जीवन समर्पित कर बाप के बनते हैं। इस अव्यक्त मुरली का मुख्य संदेश क्या है? अमृत वेला है, अनुभवी बनो, मन को सदा बिजी रखो, तीव्र पुरुषार्थी बनकर बाप समान संपन्न बनो। तो एक वन मंथ प्रॉमिस कार्ड लिखना है, ऊपर लिखेंगे वन मंथ प्रॉमिस कार्ड, ऐसी एक धारणा जिस पर एक महीना काम करेंगे। स्पिरिचुअल कमिटमेंट, जिस पर कितना दिन काम करना है? 30 डेज तक। कोई भी एक पॉइंट टॉपिक है उस पर आते हैं अभी. क्वेश्चन नंबर 5 था, सतगुरु की सबसे बड़ी श्रीमत क्या है? किसकी श्रीमत? सतगुरु की. तो हम सबको कौन मिला है? सतगुरु मिला है. एक को याद करना. और व्याभिचारी भक्ति किसको कहते हैं? क्या हम व्याभिचारी भक्ति कर रहे हैं? कौन कौन कर रहा है व्याभिचारी भक्ति? कर रहे हैं. सच्चाई के मार्क्स है. आर यू श्योर? कोई नहीं कर रहा है ना व्याभिचारी भक्ति? व्याभिचारी भक्ति तो नहीं कर रहे ना? करते नहीं, हो जाती है. व्याभिचारी भक्ति किसको कहते हैं? हमें कौन मिला है? सद्गुरु मिला है. किसी दूसरे गुरुओं के पास जाना, इसे कहते हैं व्याभिचारी भक्ति. और दूसरे गुरु अगर कोई धागा दे दे और वो पहने, तो इसे कौन सी भक्ति कहेंगे? अभी कौन कौन है जिनके हाथों में और पैरों में काला धागा है? कौन कौन काले धागे पहने हैं? जल्दी जल्दी हाथ खड़ा करो. हमें पता है सुरक्षा की दृष्टि से काला धागा. दूसरा, रक्षा की दृष्टि से ताबीज अभी किस किस ने पहन के रखा है? लॉकेट या भाग्य बदलने के लिए रत्नों की अंगूठी? रत्नों वाली अंगूठी किसके किसके पास है? ऐसी उंगलियां दिखाओ. नहीं, ऐसे ऐसे दिखाओ सब लोग. अंगूठिया कुछ भी नहीं है. किस किस के पास अंगूठी है? इधर बहने, इधर उंगली ऐसे करो सब लोग. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. अरे इधर इधर इधर. नीचे नहीं देखना है, ऊपर देखना है. हैं? जीवन का निर्णय लेने के लिए ज्योतिष का आधार कौन कौन लेते हैं? शुभ अशुभ दिन या मुहूर्त, इसके विषय में कौन कौन सोचता है? ग्रहण को अशुभ मानकर डरते कौन कौन है? न्यूमरोलॉजी से भाग्य तय करना, हस्तलेखा देखकर भविष्य तय करना, भविष्यवाणी करने के लिए ज्योतिषियों के पास जाना, ट्रेड टैरो कार्ड, वास्तु दोष को हर समस्या का कारण मानना, फेंग शुई की वस्तुओं से भाग्य बदलने की आशा रखना, टोटके, नींबू मिर्च, ताबीज, गंडा, यंत्र, भूत प्रेत उतारने के नाम पर झाड़ फूक, डर से अगर दान नहीं किया तो अहित होगा, यह मानना कि कोई विशेष पुजारी ही पाप समाप्त करता, जो भगवान समझते हैं स्वयं को, ऐसे व्यक्तियों की शरण में जाना, बिल्ली रास्ता काट जाए, छींक आ जाए, इसको अशुभ मानना, हर महत्वपूर्ण कार्य से पहले ज्योतिषियों की सलाह लेना, लकी स्टोन, लकी कॉइन, लकी चार्म, हर छोटी मोटी घटना के लिए भूत प्रेत को अदृश्य शक्तियों को मानना, आत्म परिवर्तन करने के बजाय कर्म कांडों पर निर्भर रहना, बाहरी प्रतीकों को ही आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत मानना, परमात्मा की याद से अधिक वस्तुओं में शक्ति मानना. रोज हम इतने पेशेंट्स देखते हैं और जो ब्राह्मण आत्माएं होते हैं, किसी ना किसी के हाथ में काला धागा होता है, अंगूठिया होती है, जैकेट लॉकेट होता है, तावीज होती है, कुछ ना कुछ तो होता है पक्का, माला होती है, कुछ ना कुछ तो होता है, अंगूठिया होती है अलग अलग प्रकार की. ये सब गलत है ये नहीं कह रहे. भूत प्रेत, Evil souls, ये जितने भी psychiatric problems होते हैं उनको इसका नाम दिया जाता है और वो ट्रीटमेंट डिले हो जाती है. अत्यधिक 99.99% psychiatric problems होते हैं. Schizophrenia, bipolar disorder, major depressive disorder, hallucination, confabulations, conversion disorder, hysteria, हजारों medical illnesses है जिनका treatment available है. Panic disorders, और उन सबको नाम दिया जाता है भूत प्रवेश. एविल सोल्स, हमने इसको निकाला, उसने निकाला, इसमें ये आता है, उसमें वो आता है, वो सब मैक्सिमम यही होता है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती है, इसको क्या कहेंगे। वो ये नहीं कि न्यूमरोलॉजी गलत है, ये नहीं कि एस्ट्रोलॉजी गलत है, वो भी अपना एक साइंस है, परंतु परमात्मा महावाक्य शिव मंत्र के आगे बाकी सब फेल है। हमारी शक्ति कौन सी है? हमारी शक्ति है आत्माभिमानी स्थिति, हमारी शक्ति है बाप की याद, हमारी शक्ति है श्रेष्ठ कर्म, हमारी शक्ति है श्रेष्ठ कर्म के सिद्धांत, पवित्रता। इसको न मानकर उन गुरुओं की शरण में जाना तो बढ़ता हुआ अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, उनको भी मानना, एक ऑप्शन टू रखते, पता नहीं वो भी काम कर जाए। हनुमान जी की चालीसा भी पढ़ लो, हनुमान जी की पूजा भी कर दो, यहां से ठीक नहीं हुआ तो वहां से ठीक हो जाए, किसी गुरु के पास चले जाओ, प्लान बी, ऑप्शन बी, बैकअप, ये सब भी करते हैं। क्यों? और ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हर एक अच्छे अच्छे लोग उनके पास जाते हैं, पशु बलि भी देते हैं, ब्राह्मण भी, इसको क्या कहेंगे। ये कौन सा निश्चय है? ये क्या निश्चय की कमी नहीं है? हर एक के हाथ में कुछ है, क्या ये सारी अंधश्रद्धाएं नहीं है? इसी से तो निकल कर इधर आए थे ज्ञान में, वापस वही सब चालू कर दिया है, बीमारियों को ठीक करने के अजीबोगरीब इलाज, चोट के हो सके, इसलिए शायद अगर उससे ठीक हो रहे तो बीमारी भी नकली ही होगी, फिर नकली बीमारी के लिए नकली इलाज, असली बीमारी के लिए असली इलाज। और वो सजेशंस होता है, माइंड में भर गया होता है, ये करो तो वो होगा, वो करो तो वो होगा, क्या करोगे? अगर दरवाजा खोलते ही सुबह सुबह नींबू, हल्दी और एक सुई, क्या करोगे उसका? लेमन टी इधर बोलने के लिए या वास्तव में?
टच भी नहीं करते उसको, दूर से हटा देते हैं।
यदि धागा ही सुरक्षा देता है तो चरित्र, विवेक और जागरूकता की आवश्यकता ही क्या फिर? ये लॉकेट और तावीज, ये बाहर की वस्तुएं, हाँ वो गलत नहीं है, ग्रह नक्षत्र तारे अपने आप में एक विद्या है, परंतु वो आत्माएं जिन्होंने भगवान को जाना है, परमात्मा को पहचाना है इस संसार की भीड़ में, वो क्या कर रही है, वो महत्वपूर्ण है। अंगूठे में भी एक धागा बांधते, नाभि सरक रही है इसलिए धागा, नाभि को ठीक करता है ये। कर्म, पुरुषार्थ, परिश्रम, इनका कोई वैल्यू नहीं है। एक बंजारा एक फकीर की सेवा करता है, वो फकीर खुश हो जाता है और उसे अपना गधा दे देता है, वो गधा उस फकीर की बहुत, उस बंजारे की बहुत सेवा करता है, अब उसको अपना सारा सामान उस गधे पर लाद कर फिर वो लेके जाता है, बहुत आराम मिलता है उस बंजारे को, और एक दिन वो गधा बीमार पड़ता है और गधे की मृत्यु हो जाती है, उसे बहुत दुख होता है, उस गधे की कब्र बनाता है और कब्र में वो रोने लगता है। एक राहगीर जा रहा होता है, उसे लगता है कि कोई महान संत होगा जिसकी कब्र है और ये इसलिए रो रहा है, वो पैसे निकाल कर डालने को करता है, तब तक ये आदमी कहता है बताने ही वाला था, तब तक वो कहता है ठीक है मैं समझ गया, वो बोलने ही नहीं देता है उसे, ठीक है बाद में भी मेरी सेवा, ये तो व्यवसाय बहुत अच्छा है, रोज रोता है वहां जाके, रोज लोग आते हैं, रोज चंदा चढ़ाते, और धीरे धीरे ये अमीर बनते जाता है क्योंकि एक नया प्रोफेशन हो गया और सारे गांव में खबर पड़ती है कि ये जो कब्र है किसी महान संत की है, कोई महान गुरु है जिन्होंने शरीर छोड़ा और उसका ये भगत है और उसका नाम फैल जाता है दूर दूर तक, जो भी उस गांव में आता है उसके लिए वो एक तीर्थ स्थान बन जाता है, वहां पहुंचे मतलब उस कब्र में जाना ही है और चंदा चढ़ाना ही है, माथा टेक मत्था टेकने। और एक दिन वो जो गुरु था पहला फकीर, वो उस गांव में आता है और गांव के लोग कहते हैं आप बहुत धन्यभागी, आप हमारे गांव में आए। हमारा गांव कोई साधारण गांव नहीं है, तीर्थ स्थान है ये, और यहाँ जो भी आता है उसे उस कब्र में तो जाना आवश्यक है। आप जरूर उस कब्र में जाइए क्योंकि कोई एक महान ज्ञानी की वो कब्र है। तो वो फकीर वहां जाता है और देखता है, अरे ये तो वही बंजारा है। कहते तुम? कहते हाँ मैं ही। कहते ये कब्र किसकी है? वो कहता है अब आपसे क्या छुपाना, आप तो जानते ही हो ये वही गधा है जो आपने दिया था। जीवन भर तो इसने मेरी सेवा की, मरने के बाद में भी ये मेरी सेवा कर रहा है। वो कहता है फकीर इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, अब तुम्हें मैं अपनी कहानी बताता हूं। मैं जिस गांव में रहता हूं वहां इससे भी बड़ा एक कब्र है, इससे भी बड़े एक महान पुरुष की आत्मा की कब्र है वहां पर, और उसी की वजह से मैं फकीर बना और मेरी इतनी प्रसिद्धि हुई। वो इसी गधे की मां थी। लोगों को जहां कब्र दिखती है, जहां दरगाह दिखता है, सब माथा टेकना चालू कर देते हैं। फिर वो बाकी नहीं सोचते क्योंकि यहाँ जन्म जन्म की भावनाएं इतनी गहरी चली गई है, जहां विश्वास बैठ गया वहां बैठ गया। वो झाड़ फूक वाले सारे सबको, जहां विश्वास एक बार बैठ गया व्यक्ति का बैठ जाता है, और ये सारी अंधश्रद्धाएं निर्मित हो जाती है। इसलिए ऐसा नहीं कि आत्मा परमात्मा का परिचय मिल गया तो ये छूट जाएगा, इतना आसान नहीं है। इसको ज्ञान से, विवेक से, समझ से सेंटर पर भी जाते और जाते जाते हनुमान जी के मंदिर में पूजा भी करते हुए फिर घर जाते हैं। तो भक्ति और ज्ञान साकार, कोई एक मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा था ज्ञान के शिविर में भक्त छिपे बैठे हैं, ज्ञान के शिविर में भक्त छिपे बैठे हैं, भक्ति करते हैं और उन देवताओं की भी भक्ति करते हैं। पता नहीं इधर से नहीं हुआ तो उधर हो जाए, अनुभव भी लिखते हैं फिर बीमारी ठीक नहीं हुई। अब इस गुरु के पास, इस बाबा के पास गया, उसने बीमारी ठीक कर दी, तब से मैंने ब्रह्मा कुमारी को क्यों छोड़ा, उसका वीडियो, क्योंकि कुछ प्राप्ति नहीं हुई, प्राप्ति हुई उस गुरु से, उसने मेरे पति बीमारी भी ठीक की और नौकरी भी लगी उसको बाद में। गलत कोई है ही नहीं, हम ये कह ही नहीं रहे कोई गलत है, ये भी विद्या है, ये न्यूमरोलॉजी, ये हस्तलिखाट, हम कौन है, प्रश्न ये है। शिव मंत्र के आगे बाकी सब मंत्र फेल है। अगर हम भी इस पर विश्वास करने लगे, ये पहने वो पहने, तो फिर कविता की तरफ फिर से आते हैं। कविता में क्या था, मुझे वह रात याद आई जब मेरी माँ को मिच्छू ने डंक मारा था। 10 घंटे की लगातार बारिश ने उसे मजबूर कर दिया था कि वह चावल की बोरियों के नीचे छिप जाए। बिच्छू, उसने अपना विष छोड़ते हुए अंधेरे कमरे में अपनी शैतानी पूंछ की एक चमक दिखाई और फिर वह बारिश का सामना करते हुए बाहर भाग गया। गांव के लोग मक्खियों के झुंड की तरह आ गए और ईश्वर का नाम 100 बार दोहराने लगे ताकि उस दुष्ट बिच्छू की शक्ति निष्क्रिय हो जाए। मोमबत्तियां लालटेन लाए जो मिट्टी की दीवारों पर बिच्छू की विशाल छाया डाल रही थी, वे उसे ढूंढने लगे थे लेकिन वह नहीं मिला। वे अपनी जीभ से तुत्कार करते हुए बोले, बिच्छू का हिलना डुलना माँ के रक्त में उसके जहर को और फैला रहा है। वो बिच्छू हिलना नहीं चाहिए, बिच्छू स्थिर रहना चाहिए, बिच्छू का हिलना मतलब जहर माँ के शरीर में फैल रहा है। ये है गांव वालों की धारणाएं और ये उनका विश्वास है। वे कहने लगे, वह वही स्थिर बैठा रहे, तेरे पिछले जन्मों के सारे पाप आज की रात जल जाए। अच्छा हुआ बिच्छू ने काटे, पिछले जन्म के जो पाप है वो जल रहे। उन्होंने कहा, तेरा ये दुख तेरे अगले जन्म की दुर्भाग्य की घड़ी को कम कर दे। उन्होंने प्रार्थना की, इस माया जगत में अच्छाई और बुराई का जो बैलेंस है इससे ये बन रहा है। उन्होंने कहा, यह जहर तेरे शरीर को इच्छा से मुक्त कर दे, वासना से मुक्त कर दे। और मेरी माँ क्या कर रही थी, तड़प रही थी। मेरे माँ के चारों ओर जमीन पर वो लोग बैठ गए, हर चेहरे पर समझदारी थी। क्या थी? समझदारी. माय मदर इन द सेंटर, द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस. हर चेहरे पर समझदारी और स्वीकार का एक शांत भाव था. और मोमबत्तियां और लालटेन और पड़ोसी और किट. और बाहर लगातार बरसती बारिश. मेरी माँ, माय मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन द मैट. मेरी माँ चटाई पर दर्द से तड़पती रही, सराहती रही. मेरे पिताजी स्केप्टिक रैशनलिस्ट, संशयी थे, तर्कवादी थी. हर उपाय आजमा रहे थे, मंत्र से लेकर औषधि तक, जड़ी बूटियों से लेकर रासायनिक मिश्रण तक, पाउडर, मिक्सचर, हर्ब्स, हाइब्रिड. ही इवन पोर्ड अ लिटिल पैराफिन ऑन द बिटन टोज. मोम डाला गरम पर जल रही थी. आई वॉच द होली मैम परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विद एन इंचेंटेशन. मैंने उन्हें देखा मंत्र के जहर को वश में करने के लिए अपने अनुष्ठान करते हुए. 20 घंटे बाद वह डंक की पीड़ा समाप्त हुई. मेरी माँ ने बस इतना ही कहा, भगवान का शुक्र है, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रेन. बिच्छू ने मुझे डंक मारा, मेरे बच्चों को नहीं. तो कहीं हमारी स्थिति तो ऐसी नहीं है. इधर भी मानते हैं, उधर भी मानते हैं, ये भी करते हैं, उधर भी करते हैं, इसको निकालने के उपाय करते. तांत्रिक के पास कौन कौन जाते हैं? हाथ खड़ा करना जरा. हाथ कौन खड़ा करेगा? ज्योतिषियों के पास कौन कौन जाते हैं? जरा हाथ ही देख लो एक बार, पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे. तो ये मुहूर्त, ये आज का मुहूर्त कौन सा? संगम युग पूरा शुभ मुहूर्त है, हर घड़ी शुभ है. संसार के लोग, अभी अभी एक पेशेंट था, उसको एक प्रोसीजर करने अहमदाबाद भेजना था, तो अगले दिन भेजना था. रात में वो लोगों ने डिसीजन लिया, नहीं कल नहीं भेजना है, सैटरडे को, कल शनिवार है. आज ही रातों रात 11 बजे शिफ्ट हुआ पेशेंट, बारिश में. कल नहीं जाना है, कल शनिवार है. वो भी सही है, वो उनके रीति से सही है, पर हम कौन है, प्रश्न ये है. तो अपने सारे बिलीफ सिस्टम्स को रिवाइज करना है, सारे बिलीफ सिस्टम्स को, और उसको ज्ञान के साथ जोड़कर देखना है. क्या ये सत्य है? क्या ये सत्य है? क्या ये सत्य है? क्या ये करना चाहिए? ये विवेक है? क्या ये श्रीमत है? हमें कौन मिला है? सद्गुरु मिला है. क्या सद्गुरु ने ये सिखाया? तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी. क्या क्या देखा? तो तीन की एक्टिविटीज हमने देखी. सबसे पहले इमरजेंसी मेडिटेशन, वो कभी भी करना है. जैसे ही कोई खबर आई, क्या करना है? इमरजेंसी मेडिटेशन करना है, पहला 30 सेकंड तुरंत. दूसरा हमने देखा 1 मंथ प्रॉमिस कार्ड, एक एक धारणा जिस पर 30 दिन काम करना है. वो ये भी हो सकती है, हाथों में ये सब पहन के रखे है. एक एक आत्मा एडमिट हुई थी, उसके पैरों में कुछ वो बंधा हुआ था. हमने कहा ये कहा है, तो वो सुअर के जो बाल होते हैं ना, सुअर के बाल का बना हुआ था. हॉस्पिटल में एक बार आईसीयू में एक पेशेंट एडमिट था, वो वेंटिलेटर पे था, बहुत सिक था, सीरियस था. वो गांव वाले सारे आ गए, तो बोले बस एक 5 मिनट का दे दो हमको टाइम. बोले क्या? बोले बस 5 मिनट का काम है बस. हमने कहा क्या? बस 5 मिनट, ज्यादा नहीं, घुमानी है बस वेंटिलेटर पेशेंट पर, इतनी परमिशन आप दे दो बस. आपका देखना, ये मुर्गी घुमाते शाम तक वेंटिलेटर निकल जाएगा. निकला और नॉट अलाउड. ये विश्वास है, जिसका जिसमें विश्वास होता है वो पढ़िए, सब अंधश्रद्धा है. इसलिए खुद ही रिवाइज करो क्या है, हम क्या. पर लोगों का बहुत विश्वास होता है ये सब चीजों में, बहुत विश्वास होता है. एक व्यक्ति है जिसको भूत प्रेत से डर लगता है, और उसका घर शमशान घाट से गुजरता है. रोज शमशान घाट से जाता है तो उसको डर लगता है, कोई आवाजें आती है वहां से अलग अलग, अजीब वो गरीब, अंधेरा, परछाई, पीछे से छन छन, कुछ ना कुछ आवाज आती है. अकेले में जाता है रोज ऑफिस के बाद शाम को, और ही ज्यादा आवाजें आती है, बहुत परेशान है वो। तो फिर एक तो ये डर से मुक्त होने के लिए साधु के पास जाता है, साधु उसे एक ताबीज देता है, वो ताबीज इधर लगा दो, जब तक ये ताबीज तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है। और जब से ताबीज लगता है एकदम निर्भय हो जाता है, एकदम निर्भय होकर जाता है वो, कब कुछ अभी उसको डर नहीं। पर जब रात में सोता है तो बार बार देखता है कहीं चुरा किसी ने चुराया तो नहीं, अब दूसरा भय ने पकड़ लिया कहीं ये चोरी ना हो जाए, पहले भय था भूत प्रेत, अब डर है ये नहीं चले जाए, इधर से छूटे उधर अटके। तो पहला हमने देखा वन मंथ, पहला इमरजेंसी मेडिटेशन, दूसरा वन मंथ प्रॉमिस कार्ड, एक कार्ड एक कोई एक धारणा, कोई एक बिलीफ सिस्टम पर काम करना है जो बड़ी गहरी बैठी हुई है, बिलीफ सिस्टम हमारे भीतर, उससे मुक्त होना है, वो झूठ है वो मिथ्या है। तीसरा क्या देखा, बिजी माइंड जार, इमरजेंसी कुछ मेथड्स डाल के रख देना है, कुछ कुछ चिटकी पुरुषार्थ कुछ तो डाल के रखना है, क्योंकि जब इमरजेंसी आएगी आधी रात को बेचैनी होगी, 11 बज गया, अंधेरा है कमरे में, लोग सोए हुए, समझ नहीं आ रहा है, बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, कुछ तो उठाओ कोई उत्तर मिलेगा। एक हो सकता है प्रार्थना करो, प्रार्थना में भी बहुत शक्ति होती है, प्रार्थना जैसे भक्त प्रार्थना करता है वैसे प्रार्थना। और क्या देखा प्रश्न उत्तरों में, तो आत्मा का स्वधर्म क्या है, शांति, चिंतन मनन और मंथन, अंतर चिंतन अर्थात विचार करना, सागर के उसको जीवन में कैसे लाना, उसको प्रैक्टिकल कैसे बनाना, इसकी प्लानिंग करना, दृढ़ संकल्प करना। मंथन अर्थात पूरे गहराई में जाकर सार तत्व को खींचकर लेके आना, मोती को लेके आना, उसको कहते हैं मंथन। इस सीरीज का नाम रखा है मंथन क्रांति, हलचल में नीचे गुजर जाना और कुछ तत्व कुछ मूल सिद्धांत उठा कर लाना। फिर हमने देखे थे नौ खजाने आत्मा का स्वधर्म। फिर क्या देखा, देह के संबंध किसको कहते हैं, देह का संबंध किसको कहते हैं, ये सब देह के संबंध है, प्याज ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और देह के संबंध। फिर क्या देखा, अंधश्रद्धा, ये सारी लिस्ट लंबी, ये सब की लिस्ट, इनमें से हम किस में बिलीव करते हैं, ऐसे तो करते ही है थोड़ा सा, हनुमान जी का मंदिर आया तो कौन कौन करता है, करते हैं विश्वास तो है, इतना जल्दी थोड़ी जाएगा, इतने जन्म जन्म के संस्कार है भक्ति के, जैसे ही बस में बैठे कार में बैठे मन हनुमान जी का मंदिर आया तो। ना झुकना भी ठीक है, हम मना किसी के लिए नहीं कर रहे, विरोध कुछ भी नहीं है, चिंतन है, वो चुप चुप के करते हैं, डर के करते हैं, वो गड़बड़े करना है तो रिस्पेक्ट देना कोई खराब बात नहीं है। ये भी प्रभावित होते हैं, अलग अलग लोगों से प्रभावित हो जाना, प्रभावित एक परमात्मा से होना है और किसी से नहीं, अपनी तर्क का बुद्धि का प्रयोग करना है। और मेडिटेशन जैसे हम लोग भी गए थे एक बार, तो बूढ़ी माता जी थे तो हमने उनके पैर छुए, तो एक भाई था, अरे तुम पैर क्यों छूते हो, तुम तो ब्रह्मा कुमारी में, ब्रह्मा कुमारी में तो क्या, वो माता जी है, बुजुर्ग है, रिगार्ड है उनके लिए, हमारे लौकिक टीचर उनके लिए रिगार्ड है, उससे कोई हम कम थोड़ी ना हो रहे, झुकने से तो आशीर्वाद मिलता है, कोई खराब चीज है ही नहीं। मंदिर में भी जा रहे तो ठीक है, हाँ योग करो, सांस शुद्ध होता है पवित्र होता है, उससे कोई हमारी आध्यात्मिकता कम थोड़ी ना हो रही है। क्या मेडिटेशन, बिल्ली मेडिटेशन करे परंतु बिल्ली में मोह ना हो जाए, बस पेट एनिमल्स जो है ना उसमें मोह हो जाता है। तो इतनी बातें हमने आज देखी, ओम शांति।
चिंतन चिंतन कर चिंतन मंथन 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 कर मंथन
शिव बाबा।